हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 42। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 42। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनीतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् ಏಕಾಂಶೀನಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಏಕಾಂಶೀನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ಶಬ್ದಾತ್ ಅಥವಾ ಬಹು ನೇತ್ ಏನ, ಅಥವಾ ಮತಲಬ್ ಯಾ, ಬಹೂನ ಮತಲಬ್ ಅನೇಕ, ಏತೇನ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ, ಕಿಂ ಮನ ಕ್ಯಾ, ಜ್ಞಾತೇನ ಜಾನ್ನೆ ಸೇ, ತವಾ ತುಮಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಹೇ ಅರ್ಜುನ್. ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಂ ಇಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ, ವಿಷ್ಟಭ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋಕರ್ ಅಹಂ ಯಾನಿ ಮೇ, ಇದಂ ಇಸ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಏಕ್ ಅಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್, ಏಕ್ ಮನ ಏಕ್ ಅಂಶೇನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಸ್ಥಿತೋ ಸ್ಥಿತು ಜಗತ್ ಯಾನಿ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ. ಅನುವಾದ ಔರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರ. ಅನುವಾದ ಕಿಂತು ಹೇ ಅರ್ಜುನ್, ಇಸ್ ಸಾರೆ ವಿಷದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಮೇ ತೋ ಅಪ್ನೆ ಏಕ್ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಸೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹೋಕರ್ ಇಸ್ಕೋ ಧಾರಣ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ ಹೋ. ಅತ್ಯಂತ ಹೀ ಸುಂದರ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿ ಹಮೇ ಸಮಝಾಯೆಂಗೆ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಧ್ಯಾನ ಸೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿ ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೋ ಶ್ರವಣ ಕರೆಂಗೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿ ಕಹತೆ ಹೈ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಿ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುವೋ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ ಜಾನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾ ಸಾರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಯಹ ಜಾನ್ನೆ ಕಿ ಕೋಯಿ ಸಾರ್ಥಕತಾ ನಹಿ ಹೈ ಕಿ ಸಾರಿ ವಸ್ತುವೇ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ನೆ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ತಥಾ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಉಸೆ ಇತನಾ ಹೀ ಜಾನ್ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ಸಾರಿ ವಸ್ತುವೋ ಕಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಮೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೈಸೆ ವಿರಾಟ್ ಜೀವ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಏಕ್ ಕ್ಷೂದ್ರ ಚೀಂಟಿ ತಕ್ ಇಸಿಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಮಾನ್ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಭಗವಾನ್ ಉನ್ ಸಬ್ ಮೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹೋಕರ್ ಉನ್ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಏಕ್ ಏಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಯಾನಿ ಮಿಷನ್ ಭೀ ಹೈ ಜೋ ಯಹ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಕಿ ಕಿಸಿ ಭೀ ದೇವತಾ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಭಗವಾನ್ ಯಾ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಗಿ. ಕಿಂತು ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇವತಾಂ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕೋ ಪೂರ್ಣತಯಾ ನಿರುತ್ಸಾಹಿತ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ಶಿವ ಜೈಸೆ ಮಹಾನತಮ ದೇವತಾ ಭೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿ ವಿಭೂತಿ ಕೆ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಹೈ. ವೇ ಸಮಸ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಜೀವೋ ಕೆ ಉದ್ಗಮ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಸೆ ಬಢ್ಕರ್ ಕೋಯಿ ಭೀ ನಹಿ ಹೈ. ವೇ ಅಸಮೋರ್ಧ್ವ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಕಿ ನಾ ತೋ ಕೋಯಿ ಉನ್ಸೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೈ ಔರ್ ನಾ ಹೀ ಉನ್ಕೆ ತುಲ್ಯ ಹೈ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಲೋಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ದೇವತಾಂ ಕಿ ಕೋಟಿ ಮೇ ಚಾಹೆ ವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾ ಶಿವ ಹೀ ಕ್ಯೂ ನಾ ಹೋ ಮಾನತೆ ಹೈ ವೇ ಪಾಖಂಡಿ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಕಿಂತು ಯದಿ ಕೋಯಿ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ವಿಭೂತಿಯೋ ಎವಂ ಉನ್ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಕೆ ಅಂಶೋ ಕಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ವಹ ಬಿನಾ ಕಿಸಿ ಸಂಶಯ ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೋ ಸಮಝ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಅವಿಚಲ ಭಾವ ಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಪೂಜಾ ಮೇ ಸ್ಥಿರ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ನೆ ಅಂಶ ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಸೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಮೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಹೈ ಜೋ ಹರ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಸ್ತು ಮೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಅತಃ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಮನೋ ಕೋ ಏಕಾಗ್ರ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಅತೇವ ವೇ ನಿತ್ಯ ದಿವ್ಯ ಪದ ಮೇ ಸ್ಥಿತ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 8 ಸೆ 11 ತಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ತಥಾ ಪೂಜಾ ಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಹೈ. शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यच्छत्तिलेशात् सूर्याद्या भवन्त्यत्युग्र तेजसः यदंशेन त्रितं विश्वं सकृष्णो दशमेश्युत सकृष्णो दशमेश्युते कि यच्छत्रिलेशात् सूर्यध्या भवन्त्य उग्र तेजसः। दिखने में तो ऐसा लगता है कि सूर्य के पास बहुत ही प्रचंड तेज है, बहुत प्रबल तेज है, परंतु यच्छत्रि लेशा वो भगवान जिसकी लेश मात्र शक्ति वो प्राप्त करता है सूर्य, और उस लेश मात्र शक्ति का यह प्रभाव है कि संसार के कोने कोने को प्रकाशित कर देता है। यदंशेन धृतम विश्वम सकृष्णो दशमेचते कि उसी भगवान के एक अंश से, उसी कृष्ण के एक लघु अंश के द्वारा यह पूरा संसार यदंशेन धृतम विश्वम यानी सारा विश्व जो है वो उसी कृष्ण की शक्ति से ही विद्यमान है। वही कृष्ण की शक्ति का एक छोटा सा अंश ही सब जीवों का पालन करता है, तो स कृष्णे दशमेश्यते और इसीलिए केवल कृष्ण ही पूजनीय है। अनुवाद, प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। मुखं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। इस अध्याय के शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, क्योंकि मुझे स्मरण करना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है, मुझे सदैव स्मरण करोगे। क्योंकि पहले जब चैप्टर नंबर 9 समाप्त हुआ था तब भगवान ने अर्जुन को एक आदेश दिया था और कहा था, मन मना अपने मन में मेरे विषय में सोचो, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मद्याजी मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से क्या होगा, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। ऐसा इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। वास्तव में भक्तों, भगवान को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो मानो अर्जुन भगवान से ये कहते हैं कि आपको प्राप्त करने का तरीका ये है कि हर समय आपको स्मरण करूं। तो आपको कैसे स्मरण करूं हर समय, तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उसके विषय में बताया हूं। भूय एव, पहले भी बता चुका हूं कि किस तरह से स्मरण, जैसे 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मत्तः परतरं नान्यत् किंतिजस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए हुए होते हैं उसी प्रकार संपूर्ण जगत मुझ पर ही आश्रित है। तो इसके अतिरिक्त भी भगवान ने बहुत समय अपने विषय में बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। 6.30 में भगवान ने कहा कि जो मुझे हर समय हर जगह देखता है वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाता और मैं मेरी संरक्षण में होता है, मैं भी उसका ध्यान करता हूँ। मतलब हमेशा भगवान ने अपने विषय में बताया, लेकिन क्योंकि अब भगवान ने एक बात बताई है कि आप यदि मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो हर समय आपको मुझे मेरे बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के किसी प्रश्न का इंतजार किए बिना ही स्वयं कहते हैं, भूय एवं महाबाहो, मैं वापिस से बता रहा हूँ। भूय मतलब वापिस से बता रहा हूँ, और उसको सुनो। अब तुम्हें ध्यान से सुनना है कि मुझे किस तरह से याद कर सुनो मैं परमम वचन, मेरे ये परम वचन है, तुम सुनो कि मुझे किस तरह से याद किया जा सकता है। और मैं क्यों बता रहा हूँ वापिस से, यतेहम प्रियमाणाय, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको प्रिय मानता हूँ। वक्ष्यामि हितकामय, और आपका कल्याण चाहता हूँ इसे बता रहा हूँ। फिर भगवान आगे कहते हैं कि मुझे ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। कितना दुर्लभ ज्ञान है कि बड़े बड़े देवी देवता भी इसे समझ नहीं सकते। नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। क्यों नहीं समझ सकता मुझे कोई, क्योंकि मैं आदि हूँ, मुझसे पहले कोई था नहीं, तो मुझे कोई कैसे जानेगा, है ना। जो हम उसी के विषय में जान सकते हैं ना, जो बाद में बना, हमसे पहले जो है उसके विषय में भला हम संपूर्ण ज्ञान कैसे रख सकते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, जो ये जान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ, यो माम अजमनालिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। अजन्मा तो मानो अर्जुन कहे कि अजन्मा तो आपने कहा था हम भी हैं, आत्मा भी है। आत्मा के विषय में भगवान ने कहा था ना 2.20 में, अजो नित्य शाश्वत। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अजन्मा तो आत्मा भी है, परंतु वेत्ति लोक महेश्वरम, वो आत्मा महेश्वर नहीं है, परम स्वामी नहीं है, परंतु मैं जो हूँ वो परम स्वामी हूँ, लोक का महेश्वर। तो ये जो जान लेता है कि मैं अजन्मा हूँ और संपूर्ण लोकों का महेश्वर हूँ, असम्मूढ़ समृत्येषु, तो वो मृत्यु के समय मोहग्रस्त नहीं होता है। वास्तव में जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है ना, वास्तविक सफलता है ना, वो ये है कि मृत्यु के समय जीव असम्मूढ़ रहे, उसको मोह न ग्रस्त करे। और मोह क्या है, इस भौतिक वस्तु की, कोई भौतिक जगत की कोई वस्तु का स्मरण यदि आ जाए ना, तो समझो ये बहुत बड़ा मोह है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य को जान लेता है वो मृत्यु, भगवान कहते हैं असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापाय प्रमुच्यते, वो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय विचलित नहीं होता। उसके बाद भगवान ने बताया कि इस भौतिक जगत में जिस जिस व्यक्ति के पास जो जो क्वालिटीज हैं, वो वास्तव में भवन्ति भावाभूताना मत एव पृथक्विता, कि सारी मेरी ही जीवों के जो विविध गुण हैं वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। वो कौन से हैं, भगवान ने कहा बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, ये सारे गुण मेरे से हैं। पहले भगवान ने इन गुणों के विषय में बताया और फिर कहा ना केवल गुण मुझसे आते हैं, परंतु महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा, जो सात महर्षि हैं और उनसे पहले जो चार कुमार हैं, वो भी मद्भावा, वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। किससे, मुझसे किस प्रकार, मानसा जाता, वो मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। येषां लोक इमा प्रजा, और संसार में जो भी विभिन्न लोकों के निवासी हैं, वो सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं। अपने विषय में भगवान इतना बता रहे हैं और आगे कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम योवेति तत्वतः, ये जो मेरी विभूतियां हैं, जो मेरा योग है, वो जो तत्व से जान लेता है उसका लाभ क्या होता है। बहुत ही सुंदर भगवान श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयम्। उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता, कोई अल्टरनेट नहीं रहता। जब वो जान जाता है कि सारे गुण मुझसे उत्पन्न हुए हैं, सारे ऋषि मुझसे उत्पन्न हुए हैं, सारे जो चार कुमार हैं वो मुझसे उत्पन्न हुए हैं, सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, तो एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, उसके पास सो अविकल्पेन योगेन, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, वो क्या करता है, युज्यते नात्र संशय, वह मेरी अनंत भक्ति में ही तत्पर होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहने के बाद भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता का प्रारंभ किया। ये जो श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक, उसमें चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। इसमें तीन बातें जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है वो भगवान ने बताई है। हर शास्त्र से हमें क्या सीखना है, पहला है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध का मतलब है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 8 में, कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, तुम्हारा संबंध मुझसे ये है कि तुम मेरे दास हो और मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। पहले तो ये सबका स्वामी मैं हूँ और सब कुछ मैंने ही बनाया है। ऐसे देखो संसार में क्या होता है, जो स्वामी होते हैं उनसे वो वस्तु आई नहीं होती है, वो किसी और वस्तु के स्वामी बनते हैं, अपने से निकली हुई चीज। जैसे घर बनाया किसी ने गाड़ी और कोई भी बंगला वगैरह, तो उससे तो नहीं बनी हुई है, इंग्रेडिएंट्स तो अलग से हैं, लेकिन उसका स्वामी बनता है। लेकिन भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, संपूर्ण सृष्टि मुझसे उद्भूत हुई है और मैं ही उसका स्वामी हूँ। और इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, इति मत्वा, जब उसको ये पता चल जाएगा कि संपूर्ण सृष्टि मुझसे उद्भूत हुई है और मैं ही स्वामी हूँ, जब इतना ज्ञान हो जाएगा तो भजन्ते मां, यानी भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वास्तव में भक्ति तब शुरू हो होती है जब आपको ये ज्ञान होता है कि हर एक वस्तु का स्वामी भगवान है। और भगवान कहते हैं भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, और इस तरह से जब उनको पता चल जाता है कि हर एक वस्तु भगवान से आई है, तो वो उनके हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होता है। वो कैसे होता है, वैसे भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा भौतिक जगत में हम रह रहे हैं ना, तो जिस व्यक्ति के विषय में हम जानते हैं कि इसके पास कितना सारा ऐश्वर्य है, उसकी ओर हमारा आकर्षण होता है। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ता है, मतलब आपकी क्लास में अगर कोई दूसरा क्लासमेट है, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं, लेकिन एक बार अचानक क्या हुआ, आप रास्ते से जा रहे हो और आपकी ना गाड़ी खराब हो गई, और आपको पता चले कि मेरे दोस्त का घर जो मेरी क्लास में पढ़ता है यहीं पर मेरा घर है, चलो थोड़ी देर के लिए उसके पास फोन लगाया, बोला घर पे हो, हाँ मैं हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास आता हूँ, या फिर है ना आप मेरी हेल्प करो, बोला हाँ ऊपर आ जाओ बाद में चलते। ऊपर जाओ आप देखो कि अरे बाप रे, ये जो मेरा दोस्त है जो मेरी क्लास में पढ़ता था, उसकी तो इतना बड़ा बंगलो है और उस बंगलो में इतने सारे नौकर हैं, कोई उसको हवा कर रहा है, कोई उसको सूट पहना रहा है, कोई टाई पहना रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई उतना मतलब उसका वैभव है। तब क्या होगा, जब उसके वैभव को आप देखोगे ना तो आकर्षण बढ़ेगा। वैसे तो सिंपल ही वो आपका क्लासमेट है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इसका कितना ऐश्वर्य है, तो उसकी ओर आकर्षण। आज हमारा देखिए भौतिक जगत में भी हम जब देखते हैं कि भाई ये इतना बड़ा फिल्म स्टार है, उसकी ओर आकर्षण होता है, कितना बड़ा क्रिकेटर है उसकी ओर। अगर वही क्रिकेटर इस भौतिक जगत में आपको कहीं पर मिले, आपको खबर नहीं हो उसके बारे में, तो आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, लेकिन जब आपको उसके विषय में पता होता है कि ये व्यक्ति कितना महान है, तो आपका आकर्षण बढ़ता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही संपूर्ण वस्तुओं का स्वामी हूँ और संपूर्ण वस्तुएं मुझसे निकली हैं। तो जिसको ये पूरा का पूरा पता चल जाता है वो क्या करते हैं, भजन्ते मां, मेरा भजन करते हैं भाव समन्विता। तो यहाँ पर भगवान ने अपना संबंध बताया और उसके बाद अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ भक्ति। अभिधेय में प्रोसेस ऑफ भक्ति आता है कि फिर जब आपको ये ज्ञान हो गया कि हर एक वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई है और भगवान ही स्वामी है तो आपको क्या करना है, तो भगवान बताते हैं मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमणति च। मत चित्ता मत गता प्राण, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनका चित्त मुझ में एकाग्र हो जाता है, वो मेरे जब भाव उनके हृदय में उत्पन्न होता है फिर वो मेरे विषय में और कुछ सोचना नहीं चाहते, केवल मेरे विषय में ही विचार करते हैं। और मत गतः प्राण, अपना जीवन भी मुझ में समर्पित कर देते हैं। प्राण कहते हैं अपने जीवन को मुझ में समर्पित कर देते हैं। और वो क्या करते हैं सब टाइम भक्ति का, यहाँ पर अभिधेय बता रहे हैं, प्रोसेस ऑफ भक्ति भगवान बता रहे हैं, बोधयंत परस्परम, जिससे भी मिलते हैं यदि वो बात करते हैं तो केवल मेरे विषय में, मेरे विषय में सबको ज्ञान देते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, नित्यम मतलब उनको कोई और ऐसा समय है ही नहीं जिसमें वो मेरे अतिरिक्त किसी और विषय में बात करें। कथयंतश्च माम नित्यम, और कभी बोर नहीं होते, उनको ऐसा नहीं लगता कि अभी थोड़ी देर के लिए भगवान के विषय में बोलेंगे उसके बाद मजा करेंगे, उनको मजा ही इसमें आता है। तुष्यंती, संतुष्ट हो जाते हैं, इनको और कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहती। भक्त जब भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की लीलाओं का गान करता है, भगवान की महिमा का प्रचार करता है, तो उसी से उसको संतुष्टि होती है और तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी में उसको आनंद आता है और आनंद का अनुभव करता है। ये हुआ अभिधेय। और आगे भगवान कहते हैं प्रयोजन क्या है इसका, क्या आपको चाहिए। ये सब भगवान के विषय में जान लिया, संबंध ज्ञान हो गया, उसके बाद अभिधेय, आप सदैव भगवान के प्रेम में ही लगे रहते हो, मत चित्ता मत कथा, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करते हो, भगवान की कथाओं का गान करते हो, आनंद लेते हो, और उससे प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। तब भगवान 10वें श्लोक में बताते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्। शब्द दिया भगवान ने कि फिर जब वो कंटिन्यूस मुझसे मेरा प्रेम से भजन करते हैं, मेरे नाम का भजन करते हैं, मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, मेरी लीलाओं के अमृत का आस्वादन करते हैं, सततम कंटिन्यूस करते हैं, तो उन्होंने अपना कार्य कर दिया, अब मेरी बारी आती है। मैं क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ये वही बुद्धि योग है भक्तों, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 2 में बताया था, 2.39। भगवान कहते एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्वमांशो। अब मैं बुद्धि योग बताता हूँ और उस बुद्धि योग से क्या फायदा होगा, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रणास्यसि। वास्तव में भक्तो सारी प्रॉब्लम का ये जड़ है कर्म बंधन, हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, तो इसी के कारण तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है, इसी के कारण तो दुख और सुख का ये खेल रच रहा है। लेकिन यदि बुद्धि योग में रहकर कार्य करेंगे तो कर्म बंध प्रहास्यसि, इस जन्म मरण के बंधन से, इस कर्मों की श्रृंखला से, कर्मों का जो बंधन है उससे हम छूट जाएंगे। अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वास्तव में वो जंजीरें हैं, और हमारी सफलता क्या है कि हम इस कर्म बंधन से छूट जाएं। तो भगवान कहते हैं यदि बुद्धिया युक्त तो यया पाठ है, यदि बुद्धि योग में कार्य करोगे तो फिर कर्मों के बंधन की श्रृंखला से छूट सकोगे। और आगे भगवान ने इसका दूसरा फायदा बताया, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कोशिश में ना तो घाटा है और ना ही नुकसान, ना ही हानि है और ना ही कमी है, और इसमें इस रास्ते पे की गई स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य थोड़ी सी भी प्रगति त्रायते महतो भया जी को बड़े से बड़े भय से छुड़ा देती है। और उसके बाद अगर उसको बुद्धि नहीं आती, मुझ तक पहुंचने का यदि वो तरीका नहीं समझता है, मैं बुद्धि योग उसको प्रदान करता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं उस पे बहुत अनुकंपा करता हूँ, तेषामेवानुकम्पाथ अहम अज्ञानजम तमः, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लगे हुए हैं तो हृदय के अंदर इतनी मलिनता है कि वो बुद्धि योग जो है ना उसको सही तरह से ग्रहण नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि उन पे बहुत ज्यादा अनुकंपा करता हूँ और अज्ञान जम तमा, अज्ञान के कारण उनके हृदय में जो अंधकार हो गया है, नाशयाम आत्मभावस्तु, आत्मभावस्तु मतलब उनकी उनके हृदय के अंदर जो कई कई करोड़ों करोड़ जन्मों से जो अंधकार जम गया है उसको नाश करता हूँ। किससे? ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान के प्रज्वलित दीपक के द्वारा मैं स्वयं उसके हृदय में बैठ जाता हूँ और अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता हूँ। वास्तव में भक्तों, ये भगवान की अनुकंपा है। जब जीव जो है वो भगवान के विषय में जान जाता है, भगवान से प्रेम करना, प्रेम का संबंध स्थापित करता है, तो भगवान की प्राप्ति जो है वो लक्ष्य है। और भगवान कहते हैं वो मैं स्वयं उसको पहुंचा देता हूँ। यहाँ तक यूं कहिए कि भगवद गीता का वास्तविक जो प्रयोजन है भगवान ने समाप्त कर दिया। लेकिन इतना सुनने के बाद अर्जुन बोलते हैं और कहते हैं, मैं मान गया कृष्ण, मैं आपकी स्थिति को समझ गया हूँ। परम ब्रह्म परम नाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु, मैं जान गया कृष्ण कि तुम ही परम ब्रह्म हो, ब्रह्म जो है वो तुमसे आया है, परम धाम जो है वो तुम हो, संसार में यदि कुछ पवित्र है तो तुम हो, और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, तुम पुरुष हो, व्यक्ति हो, आनंद लेने वाले हो, और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं इस बात को जान गया हूँ, शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत हो और आध्यात्मिक हो, दिव्य हो, आदि देवम, समस्त देवताओं के आदि हो, अजम, अजन्मा हो और विभू हो। ये मैं कह नहीं रहा खाली, ये तो सारे ऋषियों ने बताया है, सारे जितने महान ऋषि हैं, आहुस्तोम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा नारद मुनि ने, सारे ऋषियों ने, असितो देवलो व्यास स्वयं सैव ब्रवीषि में, सारे ऋषियों ने आपके विषय में कहा है। और आज मैं आपके सामने इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सर्व में तत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशवा नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। मैं आपके सामने इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि सर्व में तद ऋतम मन्ये, अब तक जो कुछ मैंने आपसे सुना है उस सब बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, सब कुछ ऋतम मन्ये, मुझे सब कुछ पूरे का पूरा सत्य है। ये मैं जानता हूँ कि आप आदि हैं, आप अजन्मा हैं, आप सब कुछ के कारण हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। वदसी केशव, जो जो आपने बोला उसको स्वीकार करता हूँ। और दूसरी बात ये कि क्योंकि आपने मुझे बताया है और आप अपने विषय में तो जानते हैं, तो मुझे सब कुछ सत्य बताया है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा, इस बात को भी समझ गया कि क्योंकि आप ही आदि हो देवताओं के भी और दानवों के भी, तो वो आपको नहीं समझ सकते। और भगवान को अर्जुन कहते हैं कि स्वयं वात्मनात्मान वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगद्गुरु। स्वयं वात्मनात्मान, आपने स्वयं आत्मनानं मतलब अपनी अंतरंग शक्ति से वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, आपने स्वयं ही मुझे बताया है, तो भूत भावन भूतेश, मैं जान गया हूँ कि आप भूत भावन हो, यानी सृष्टि के सारे जीवों के जितने भी भूत प्राणी हैं उनके स्वामी हो, भूत ईश हो, सबके पैदा करने वाले हो और देवताओं के भी देवता हो, जगतपति हो। और आगे कहा अर्जुन ने, वक्तुम अर्हस्य शेषेण, परंतु आपने जितना बताया उससे मुझे आनंद तो आया मगर तृप्ति नहीं हुई, इसलिए अशेषण, अशेषण मतलब विस्तार से बताइए, आपके विषय में बहुत दिल कर रहा है कि मैं और भी सुनूं। तो वक्तुम, यहाँ पर अर्जुन श्लोक नंबर 16 भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी है आपके विषय में वो आप मुझे बताइए। दिव्या ह्यात्म विभूतया, जो आपकी जो विभूतियां हैं आपके विषय में, आपके विषय में जो कुछ भी है वो मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि याबिर विभूति बिरलोकान एमांस्तम व्याप्य तिष्ठता, कि इस संसार में आप किस प्रकार से किस प्रकार से समस्त लोकों में व्याप्त हैं वो सब मुझे विस्तार से बताइए। कथम विद्यामहम व्योगिन स्वाम सदा परिचिंतना, वास्तव में मैं ये जानना चाहता हूँ कि संसार की हर एक वस्तु को देखकर आपके विषय में कैसे सोचूं, किस किस वस्तु को देखकर, कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतना, किस तरह से मैं हर जगह हर समय आपका चिंतन करूं, और केशु केशु च भावेशु चिंत्योस्मि भगवन मया, आप मुझे बताइए कि आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, क्योंकि अब तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हर समय हर क्षण आपको स्मरण करूं, तो किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जा सकता है। अब देखो संक्षिप्त में मत बताना, भगवान से कहते हैं 3 में, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शुण्वतो नास्ति मे मृतम्। आपका जो ये अमृत है ना, आप मुझे जो पिला रहे हो अपनी विभूतियों के विषय में, अपनी महानता के विषय में, तो तृप्ति भूय कथया तृप्तिर्हि, आपके विषय में सुनने से मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है, आनंद तो आ रहा है मगर तृप्ति नहीं हो रही है, और जितना अधिक सुन रहा हूँ उतना ही क्या हो रहा है मुझे, श्रवतो नास्ति मेमृतम, ऐसा लगता है और भी इच्छा हो रही है, उतना ही आपके शब्दामृत को चखने की हृदय के अंदर तृष्णा बढ़ रही है। कोई जैसे कोई प्यासा होगा ना, तो उसके यदि वो एक गिलास पानी पिएगा, दो गिलास पानी पिएगा, तो पानी पीने से क्या होगा, उसकी तृष्णा खत्म होनी चाहिए ना। परंतु ये भगवत कथा, ये भगवान का जो प्रेम है, वो जिसको जितना मिला है वो उतना ही अधिक प्यासा होता है, उतना ही उसको अधिक उसको तृष्णा बढ़ती है, और यही भक्ति में प्रगति है। जितनी जितनी हमारी तृष्णा बढ़ती है, भगवान ये जो 88,000 ऋषि मुनि है वो सूत गोस्वामी को यही कहते हैं, वयम तो न वितृप्त्यामि, आप बता रहे हो परंतु हमारी तृप्ति तो हो रही नहीं है, स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक शब्द को श्रवण जितना करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं उतना ही आनंद आ रहा है, और भी अधिक यह रस पीने की इच्छा हो रही है। तो फिर आप भगवान अर्जुन भगवान को यह प्रार्थना करते हैं कि आप विस्तार से बताइए, परंतु भगवान उस समय उत्तर देते कहते हैं, हंत ते कथयिष्यामि, हंत यानी भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ अर्जुन तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मेरे विषय में सुनो, तो इसीलिए हाँ हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया, मैं अपनी विभूतियों के विषय में, जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनके विषय में आपको बता रहा हूँ, परंतु प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, सिर्फ जो प्रधान है उनके विषय में ही बताऊंगा, क्यों सारी क्यों नहीं, विस्तार से क्यों नहीं। तो भगवान कहते हैं, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे, इनका कोई मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, तो जब अंत ही नहीं है तो तुम कितना सुन सकोगे और मैं तुम्हें कितना सुनाऊंगा, सीमित इंद्रियां हैं तुम्हारी, इसलिए जो मुख्य हैं प्रधान है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और इतना कहने के बाद भगवान ने श्लोक नंबर 20 से लेकर श्लोक नंबर 38 तक इन 18 श्लोकों में अपनी विभिन्न विभूतियों के विषय में बताया और श्लोक नंबर 20 में भगवान ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। यही बात आज के श्लोक में भगवान अभी कह रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश सारे जीवों के हृदय के अंदर आत्मा बनकर मैं बैठा हूँ। सर्वभूताशय स्थिता सारे जीवों के अंदर ना केवल मनुष्य के अंदर ना केवल भारतीयों के अंदर ना केवल पाकिस्तानियों के अंदर हर एक जीव भगवान कहते हैं सर्वभूताशय स्थिता वो भूत सारे जीवों के अंदर जो आत्मा है जिसके द्वारा वो सारे कार्य करते हैं वो मैं हूँ। वास्तव में हमारे शरीर की वैल्यू ही नहीं है जब आत्मा इसके अंदर होती है तभी ही वो शरीर महत्वपूर्ण होता है। यदि आत्मा नहीं हो तो फिर इस शरीर का कोई भाव नहीं है। इस शरीर में अगर देखा जाए तो केवल कचरा भरा हुआ है लेकिन यह अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर भगवान एक अंश रूप में बैठे हुए हैं और भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। समाप्त कर दी भगवान ने यहीं पर अपनी सारी विभूतियों के सारे जीवों के अंदर जो कार्य करने हृदय के अंदर जो आत्मा है जो शक्ति है जो प्राण है वो मैं हूँ और मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ मध्य हूँ अंत हूँ यानी सबका जन्म देने वाला भी मैं हूँ उनको पालने वाला भी मैं हूँ और उनका संहार करने वाला भी मैं हूँ। और इसके बाद भगवान ने देवताओं के विषय में बताया कि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमाम के आदित्य जितने भी हैं उनमें मैं विष्णु हूँ और जो प्रकाश पुंज हैं उनमें रवि अंशुमाम यानी सूर्य हूँ जो प्रकाश करता है। मरीचिर मरुतामस्मी सारे मरीचियों में सारे मरुतों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्राणाम अहम शशि सूर्य चंद्रमा ये सब देवताओं के विषय भगवान ने बताया ये सब इनमें जो महान है जो जीवों का कल्याण करने के लिए जैसे सूर्य समुद्र से जल उठाकर संपूर्ण सृष्टि में वर्षा करता है वो मैं हूँ। ये जो चंद्रमा है जो समस्त वनस्पतियों में रस डालता है वो मैं हूँ। और आगे कहा देवानाम सॉरी वेदानाम सामवेदोस्मी बहुत सारे वेद हैं लेकिन सामवेद में हूँ और देवानाम अस्मी वासवः देवताओं में मैं इंद्र हूँ क्योंकि वो इंद्र जो है वो राजा है और इंद्रियाणाम मनश्चास्मी वेद तो सारी इंद्रियां कार्य करती हैं परंतु मन उनको कंट्रोल करता है मन की इच्छा मन के अंदर जो वासना होती है उसी के अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं। तो इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूताना अस्मि चेतना और मन भी तभी कार्य कर सकता है जब जीव के अंदर चेतना है तो वास्तविक तो चेतना मैं हूँ। आगे भगवान ने इसी देवताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कहा रुद्राणाम शंकरास्मि रुद्रम 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ वित्तेशो यक्ष रक्षसाम और जो जो देवताओं का खजांची है कुबेर वो यक्षों रक्षसों में मैं कुबेर हूँ और वसुनाम पावकास्मी वसुनाम अग्नियों में जितने भी सॉरी वसुएं हैं वसु उनमें मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। प्रोदसाम च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पति बहुत सारे पुरोहित हैं परंतु जो बृहस्पति जो देवताओं का पुरोहित है वो मैं हूँ और सारे सेना नायकों में स्कंद यानी कार्तिकीय मैं हूँ और सरसाम अस्मि सागरा जितने जलाशय हैं उनमें मैं सागर हूँ। उसके बाद भगवान ने ये बताया कि जितने भी ऋषि हैं उनमें मैं भृगु ऋषि हूँ और बहुत ही सुंदर बात भगवान ने श्लोक नंबर 25 में बताई यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि जीव के लिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक है परंतु इस कलयुग में जो स्वाहा वाला यज्ञ है उसके लिए पर्याप्त वस्तुएं नहीं है ना ही कोई शुद्ध ब्राह्मण है और ना ही शुद्ध हृदय वाला यजमान है तो वो सारे यज्ञों में भगवान ने कहकर बता दिया कि मैं जप यज्ञ हूँ। तो हमें हर समय, यानी कि जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो साक्षात भगवान की विभूति है। इसके बाद भगवान ने बताया कि पशुओं में भी, जैसे जितने घोड़े हैं उनमें मैं उच्छेश्वरवा हूँ, जो गजराज हैं उनमें, मतलब हाथी जो हैं उनमें ऐरावत हूँ जो कि समुद्र के। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भगवान ने बताई और उसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि जो प्रहलाद, जो दैत्य हैं, वो भी मुझसे अलग नहीं। ऐसा नहीं कि उनकी शक्ति अलग है, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ तो बाकी जितने भी दैत्य हैं उनके अंदर भी सामर्थ्य है, वो मैं हूँ। और भगवान कहते हैं मृगाणा मृगेंद्रोहम, यानी कि जो पशु हैं उनमें भी मैं सिंह हूँ। और आगे भगवान ने कहा कि जशाणा मकरशासनी, जो समुद्र के जो रहने वाले जीव हैं उनमें मैं मगरमच्छ हूँ। सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। सर्गाणाम यानी संपूर्ण सृष्टि जो भी बना है, जो कुछ भी भौतिक जगत में है, उसका आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ और सारी विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अक्षराणाम अकारोस्मि, जो शब्द हम बोलते हैं, जो भी संसार में जितने भी शब्द हैं उनके अंदर अशब्द सम्मिलित होता है, जैसे क ख ख ख अ जो है, भगवान कहते हैं अ के बगैर कोई भी शब्द बनता नहीं है और वह मेरा स्वरूप है। और यदि किसी शब्द के साथ अ लग जाए तो वो शब्द की मायने ही चेंज कर देता है, उल्टा शब्द बना देता है। जैसे धर्म के साथ अ लग जाए तो अधर्म है ना, पवित्र के साथ यदि अ लग जाए तो अपवित्र, शुद्ध के साथ यदि अलग जाए तो अशुद्ध, संशय के साथ यदि अलग जाए तो असंशय। तो भगवान ने कहा यह जो अ शब्द है वो मेरी विभूति है। और भगवान इसके अतिरिक्त भी अपनी समस्त विभूतियों के विषय में बताते हैं, मृत्यु सर्वहरस्याहम, कि इस संसार में हम अपने जीने के लिए, अपने सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत 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 समय तक हम जी रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम इस भौतिक जगत में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु बन के आता हूँ, क्योंकि हर एक वस्तु मेरी है तो कोई भी इस पर अपना अधिकार कितना ही जमा ले, परंतु मैं कंट्रोलर हूँ ये साबित होता है उस समय जब मैं मृत्यु बनकर आता हूँ और हर एक जीव की हर एक वस्तु उससे हरण कर लेता हूँ। उद्भवस्य भविष्यता, परंतु मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से जीव उत्पन्न होते हैं और उन भविष्य में उनको वो सारी चीजें उनकी मेहनत के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त हो जाती है। और भगवान ने कहा कीर्ति श्री वाक्चनारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक चतुराई स्मृति मेधा धृति, यह सब मैं हूँ, ये सब वास्तव में स्त्री लिंग क्वालिटीज हैं। जैसे कीर्ति, मेरी कीर्ति, ये सब स्त्री लिंग हैं। और भगवान कहते हैं ये सब मैं हूँ, मेरी विभूतियां हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गायत्री छंद सामहम, गायत्री जो हूँ मैं, छंदों में मैं गायत्री हूँ। और मासाना मार्गशीर्षोम, मास जितने महीने हैं उसमें मैं मार्गशीर हूँ। आगे भगवान ने कहा द्यूतम सलयतामस्मि, जीव सोचता है कि चलो ठीक है, जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी भगवान, वो भगवान में उनकी विभूति होगी, लेकिन भगवान कहते हैं मैं छलियों में जुआ हूँ, ये ऐसा छल है। वैसे तो हम छल करते हैं और उसको पता नहीं लगने देते कि हमने उसके साथ छल किया है, ऐसा होता है छल, लेकिन ये ऐसा छल है कि सामने वाला स्वतः अपना सब कुछ दाव पर लगाता है, तो यह छल भी मैं ही हूँ। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा विष्णुना वासुदेवस्मि, यानी कि विष्णु में मैं बलराम हूँ, पांडवानाम धनंजय, और पांडवों में मैं धनंजय हूँ। और इसके अतिरिक्त भगवान ने बहुत सुंदर बताया दंडो दमयतामस्मि नीति रश्मि जिगीषताम, अराजकता तो दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और विजय की आकांक्षी में उनकी नीति हो। यानी कि जो विजय प्राप्त करने के लिए अनीति का सहारा लेते हैं वो मेरी विभूति नहीं है, वो उनको मैं मतलब यहाँ पर क्या है, भगवान उनको भी पावर देते हैं परंतु भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं कि वास्तव में जो उस विजय के अंदर जो नीति पे चल रहा है वो मैं हूँ। आगे भगवान बताते हैं, गुहिया नाम मौनम चास्मि गुहिया नाम। कोई आपकी कोई बात, आपका कोई सीक्रेट तभी तक सीक्रेट रहता है जब तक आप चुप रहते हो। राज तब तक राज है जब आपके हृदय में है, अब और उस समय राज आपका कैदी होता है, परंतु जब वो राज आपके मुख पर आ जाता है तो आप उसके कैदी बन जाते हो। भगवान कहते हैं मौनम चैवास्मि गुहिया नाम, जो सीक्रेट है उन सब में मैं मौन हूँ। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 39 में कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विना यत्सान मया भूतं चराचरम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का अंत करते हुए कहा विदाउट मी नथिंग कैन एक्सिस्ट एनीथिंग, मेरे बगैर मेरी कृपा के बगैर इस संसार न तदस्ति विना यत्सान मया भूतम चराचरम, चाहे चर हो चाहे अचर हो, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मेरी कृपा के बगैर किसी का होना संभव नहीं है। और सारे भूतों का, सारे जीवों का, जितने भी जीव हैं, कोई इसमें भगवान ने ये नहीं लिखा खाली मनुष्यों का, चाहे कीड़ा हो चाहे कुत्ता हो चाहे गधा हो, इन सब का यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन, उनका बीज में हूँ। और आगे भगवान ने 40 में कहा नन्तो सीमम दिव्यानां विभूतिनां परंतप एषते तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। इससे तो अर्जुन मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अभी जो मैंने तुम्हें बताया एष तु देशतः प्रोक्तो, जो अभी मैंने प्रोक्त यानी बताए हैं, जो कुछ कहे हैं वो क्या है, मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। विभूतिर विस्तरो मया, संकेत है, सिर्फ एक टेलर दिखाया तुमको, लेकिन ये जान लो अर्जुन यत्यत् विभूति मत्सत्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभवम्। अर्जुन इस भौतिक जगत में यद्यद् विभूति मत्सत्वम्, जो कुछ भी तुम्हें विभूति ऐश्वर्यमय लगता है, जो कुछ तुम्हें अस्तित्व जो जिस चीज का दिख रहा है, जो कुछ सुंदर लगता है, जो कुछ तेजस्वी लगता है, तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश अवगच्छम, तुम जान लो कि वो क्या है, मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज का एक छोटा सा अंश है। और आज भगवान ने कहा अथवा बहु नायतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, अर्जुन इस संपूर्ण विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है, तुम्हें जानना है तो इतना जान लो विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांक्षेन स्थितो जगत, कि इस जगत पूरे जगत को मैं चला रहा हूँ, मैं किस तरह चला रहा हूँ, अपने एक अंश मात्र से। यहाँ पर भगवान कहते हैं विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांक्षेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण विराट जगत में व्याप्त हो जाता हूँ और इसको धारण करता हूँ, एक मेरा छोटा सा अंश है। ये मत समझना कि ये भौतिक जगत मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य है, जो कुछ आज तक तुमने देखा है सुना है वो सब मेरा एक छोटा सा अंश है। और श्री प्रभुपाद जी ने बताया परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत पे प्रतिनिधित्व है, सारे भौतिक जगत को का यदि उसके उसका अस्तित्व है, यदि वो चल रहा है, चलायमान हो रहा है, तो उसका कारण केवल इतना है कि भगवान परमात्मा स्वरूप में इस भौतिक जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए ही इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी, इसी लिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रवेश होकर उनका पालन करते हैं। यदि भगवान अपने एक अंश में इस भौतिक जगत में ना होते तो यह भौतिक जगत निर्जीव होता ना होता इसका अस्तित्व। यदि भगवान कृष्ण इसके अंदर नहीं तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही सुंदर एक यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बात बताई है कि क्योंकि भगवान ने बताया एक एक चीज के बारे में कि वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, प्रहलाद उसमें दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और डंडों में दम हूँ, और भगवान ने कहा कि गौड़ों में उच्चेश्वर हूँ, ऐरावत हूँ गजेंद्रों में, और जितने भी पशु हैं उनमें सिंह हूँ। तो इसका मतलब है ये सब भगवान ही हैं, जितने भी हैं वो सब भगवान ही हैं। तो किसी की भी पूजा करेंगे तो भगवान को ही मिलेगी ना, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि रुद्राणाम शंकरो शंकरश्चास्मि वसुनाम पावका प्रोदसाम च मुख्यमाम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम अहम स्कंद। तो ये सब भगवान ने स्वयं कहा है अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। तो भले कोई वृक्ष की पूजा कर लेना, अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करेगा तो भगवान का ही स्वरूप है, तो उसको भी पूजेंगे तो भगवान को ही पूजना हुआ ना। लेकिन भगवान यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं विष्ट व्याहम इदम कृष्णम एकांक्षेन स्थितो जगत, वो मेरा संपूर्ण स्वरूप नहीं है, मैं वास्तव में मेरा एक अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व और मेरा अंश क्या उसमें कोई डिफरेंस नहीं है? समुद्र और समुद्र की बूंद में क्या कोई डिफरेंस नहीं है? आपने समुद्र को देखा हो और किसी ने केवल एक बूंद को देखा हो तो क्या एक ही बराबर है? ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान की महानता अनंत गुना है। इसी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि एक ऐसी धार्मिक संस्था है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि देवी देवताओं में कार्तिकेय में हूँ और शंकर में हूँ, इंद्र में हूँ। तो किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, भगवान ने स्वयं कहा चंद्र में हूँ, सूर्य में हूँ, तो फिर भगवान की पूजा का ही परम लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं, वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान होना तो बहुत बड़ी बात है, वे तो भगवान क्या भगवान के बराबर होना या भगवान से ऊपर होना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, भगवान के बराबर होना भी किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो विभू है, हम सब अणु है। एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, चाहे जितने भी देवी देवताओं को आप जानते हो, जितने भी गुरुओं को जानते हो, जितने भी बड़े बड़े योगियों को जानते हो, वो सब भगवान कहते हैं विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांक्षेन स्तुतो जगत। इस संसार में जो कुछ भी बड़े से बड़ी वस्तु दिख रही है वो मेरे एक अंश के कारण विद्यमान है, मेरा एक छोटा सा अंश जो है एक लघु अंश के कारण ही तुमको ये सुंदरता दिख रही है, तुमको ये तेज दिख रहा है, तुमको ये आकर्षण दिख रहा है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब संसार की इतनी छोट भगवान का एक छोटा सा अंश है उसके कारण संसार हमें इतना आकर्षित करता है कि हम इस संसार से इतना प्रेम करने लगते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। अगर भगवान का आकर्षण एक बार हमारी ओर हमारे हृदय की ओर प्रकाशित हो गया तो फिर ये संसार तुच्छ लगने लगेगा, एकदम इस संसार यह संसार निगरणीय लगने लगेगा। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने कहा कि स्वामी जी भगवान इतने आकर्षित हैं, परंतु भगवान ने इतनी आकर्षण वाली इस भौतिक जगत में वस्तुएं रखी हैं कि जिसके कारण हमारा आकर्षण भौतिक जगत में ही बढ़ता जा रहा है, भगवान की ओर होता ही नहीं है। अगर भगवान के मतलब भौतिक जगत में इतना आकर्षण नहीं होता तो शायद हम भगवान की ओर अपना आकर्षण निर्माण कर सकते। तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत सुंदर बताया कि इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री, सबसे जो मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स जो हो, मिस यूनिवर्स है जो, वो सबसे सुंदर स्त्री भी जो है ना, वो जो स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं ना, जो स्वर्ग में डांस करती हैं, उनके आगे इस संसार की जो मिस यूनिवर्स है वो तो एक छोटे मतलब कीड़े मकोड़े की तरह है, मतलब उसका उसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं की सुंदरता के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं के अंदर जो सुंदरता है उसके सामने तो इस भौतिक जगत की जो हाईएस्ट जो वो टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल होगी ना वो भी उसके सामने कीड़े की तरह लगती है। और उसके बाद ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के एक अंश मात्र हैं। वो समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। और श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि वो असमूर्धवा यानी जिसका अर्थ है कि ना तो उनके कोई बराबर हो सकता है और ना ही उनके कोई तुल्य हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वो ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो यदि ये मानते हैं कि यदि हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर लें तो हम समझो कि एक ही बात है भगवान की कर रहे हैं, जो ऐसा मानते हैं वे पाखंडी हो जाते हैं, वो कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते। तो वास्तविकता क्या है कि कृष्ण ही वास्तविक समस्त देवी देवताओं के समस्त जीवों के समस्त भूतों के स्वामी हैं और बाकी सब उनके सेवक हैं। इसलिए हमें भगवान से कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और संसार की हर एक वस्तु को देखकर हमें यह याद रखना चाहिए कि इसके अंदर जो ये तेज है जो उसके अंदर बुद्धि है जो शक्ति है वो सब कृष्ण के ही कारण है। परंतु उसमें भी अंतर है क्योंकि संसार के अंदर भगवान ने जो कुछ दिया है वो सब टेम्पररी है अस्थाई है। जैसे संसार में कोई बच्चा होता है तो सुंदर लगता है, फिर जवान होता है तो और सुंदर लगता है, लेकिन वो कभी भी फॉर एवर जवान नहीं रह सकता, आखिर उसको बूढ़ा होना पड़ता है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। और सेम इस भौतिक जगत में जिस जिस जीव के पास शक्ति है तो शक्ति भी समय के बाद समाप्त हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है। और इस भौतिक जगत में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब टेम्पररी है, परंतु इन सब का स्रोत जो ओरिजिन है वो कृष्ण है। इसलिए यदि किसी की ओर आकर्षण निर्माण करना है और अपने आकर्षण का किसी को केंद्र बनाना है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए समस्त सहारों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, भगवान की कथाओं को श्रवण करें और भगवान के पवित्र नाम का जप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। लगता है आप सबने मेरे लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया, इसलिए मुझसे मेरी सेवा भी छूट रही है। हाथ जोड़कर चरणों पे हाथ रखकर प्रार्थना है कि दिन में एक बार जब लेक्चर सुनो उसके बाद भगवान को ये प्रार्थना अवश्य किया करो कि वो मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।